नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में थाना स्तर पर भ्रष्ट आचरण वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को अब निलंबित करने के साथ साथ पदावनत भी किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन इस महीने के अंत तक प्रकाशित किया जाएगा। जिलेवार निकाली जाएंगी रिक्तियां। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद, आज अलविदा जुम्मा। और मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य में थाना स्तर पर भ्रष्ट आचरण वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों पर अब निलंबन के साथ साथ उन्हें पदावनत यानी डिमोट किया जाएगा। पदावनति के बाद सामान्य जिम्मेदारी के साथ उनकी उसी थाने में तैनाती होगी जिसमें वे पहले से पदस्थापित हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया कि क्षेत्रीय पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में पुलिस मैनुअल के तहत ऐसे अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के अन्य विकल्पों का भी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस अनुशासन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के चौथे चरण का आज अंतिम दिन है। यात्रा के अंतिम दिन आज मुख्यमंत्री गया और औरंगाबाद जिले का दौरा करेंगे। हमारे गया संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। टनकुप्पा प्रखंड स्थित मायापुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 367 करोड़ रुपए लागत वाली 553 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे 377 करोड़ रुपए की लागत से 140 योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। श्री कुमार जिले में चल रही विभिन्न विकास और कल्याणकारी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री का जन संवाद का भी कार्यक्रम है। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
इधर औरंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 555 करोड़ रुपए की लागत वाली 120 योजनाओं का शिलान्यास और 123 करोड़ रुपए की लागत वाली 142 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री किस दल का या फिर कौन होगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा समाप्त होने के बाद इस मामले पर एनडीए के सभी घटक दल बैठक कर अंतिम फैसला करेंगे। श्री झा ने बताया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सुझाव महत्वपूर्ण होगा।
नहीं, अभी कुछ तय नहीं है। अभी यात्रा चल रहा है मुख्यमंत्री जी का। जब यात्रा खत्म होगा उसके बाद ही इन विषय पे बात होगी। ये एनडीए की सरकार होगी, कोई एक पार्टी की सरकार तो होगी नहीं, पूरी एनडीए की सरकार है। और जब चर्चा होगी जो कौन किस रोल में रहेगा उस समय ये सब बात तय होगी। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता एनडीए के बिहार में, उनका सुझाव जरूर इस सारे चीजों में रहेगा जो नया सरकार का फॉर्मेशन होगा।
इधर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा से सम्राट चौधरी इस पद के प्रमुख दावेदार हैं और ऐसा लगता है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी पहली पसंद हैं।
नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं कहते नहीं हैं, लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए।
योजना और विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी ने कहा है कि बिहार में लगभग 2 करोड़ 25 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। पटना में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कारण संभव हो सका है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य स्तर पर 334 संकेतकों का एक व्यापक ढांचा है जिससे योजनाओं की प्रगति की नियमित निगरानी की जा रही है। डॉक्टर विजयलक्ष्मी ने कहा कि बिहार की जीएसटीपी वृद्धि दर वर्ष 2024-25 में 13.1% थी जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण की परीक्षा का विज्ञापन इस महीने के अंत तक प्रकाशित किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग से जो भी बदलाव किए जाने थे उसका प्रस्ताव मिल गया है। इस बार जिलावार रिक्तियां निकाली जाएंगी। अभ्यर्थियों को सभी 38 जिलों का विकल्प पढ़ने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 46,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां होनी है। दिल्ली की राव रेवेन्यू अदालत ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका में उन्होंने ट्रायल की तैयारी के लिए 1600 से अधिक दस्तावेज देने की मांग की थी। न्यायाधीश विशाल कोगनी ने अपने आदेश में कहा कि सभी दस्तावेज एक साथ देने से पूरी न्यायिक प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपियों की मंशा कार्यवाही को लंबा खींचने की है। अदालत ने मामले के सह आरोपी आर.के. महाजन और रेलवे के तत्कालीन जीएम महीप कपूर की याचिकाएं भी खारिज कर दी। पटना उच्च न्यायालय ने चर्चित दुलार चंद यादव हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद जमानत दी। हालांकि न्यायालय ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इसके तहत सूचक और केस के गवाहों को धमकाने पर जमानत रद्द करने की गुहार लगाने की पूरी छूट दी गई है। साथ ही जमानतदार में परिवार का निकटतम सदस्य और केस की सुनवाई के दौरान विधायक को कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। देश भर में कल ईद मनाई जाएगी। बिहार समेत देश के किसी भी हिस्से में कल ईद का चांद नहीं देखा गया। फुलवारी शरीफ स्थित इमारत ए शरिया के काजी ए शरीयत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अंजार आलम कासमी ने बताया कि आज अलविदा जुम्मा होगा।
ईद उल फित्र का चांद नजर नहीं आया और न कहीं से चांद देखे जाने की कोई खबर मौसूल हुई, इसलिए 30 की रुयत का एतबार करते हुए मुअर्रखा 21 मार्च 2026 रोज शनिचर को तमाम मुसलमान ईद उल फित्र की नमाज अदा करें। इस ऐलान की तस्दीक इमारत आले हदीस के अमीर मौलाना गाजी अब्दुल्ला वल मौलाना अब्दुस्समी सादिक पूरी और शिया रुयत हिलाल कमेटी के सदर मौलाना सैयद असद रजा साहब ने भी की है।
मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि आज राज्य के अधिकतर हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है।
दिनांक 20 मार्च 2026 राज्य के मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर एवं बांका जिलों के एक या दो स्थानों में ओलावृष्टि की संभावना है। राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है।
प्रदेश में रसोई गैस की कालाबाजारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 मार्च से 18 मार्च के बीच एलपीजी के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के मामले में 18 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं 472 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। साथ ही कालाबाजारी में शामिल 26 लोगों की पहचान करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जानी मानी सीमेंट कंपनी बांका के कटोरिया औद्योगिक क्षेत्र में नई फैक्ट्री लगाएगी। इसके माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उद्योग सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि इससे 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आज विश्व कोरैया दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य कोरैया की घटती आबादी को बढ़ाने के संबंध में जागरूकता और संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देना है। गौरैया कीटों की आबादी को नियंत्रित करने के साथ ही पौधों में परागण करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौरैया दिवस के अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने अपने संदेश में कहा कि बिहार वासियों को अपने राजकीय पक्षी के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। बीसीए मेंस अंडर 23 वनडे ट्रॉफी में कल खेले गए मैचों में नवादा, गोपालगंज, बांका, समस्तीपुर, कैमूर, शिवहर और पूर्णिया की टीमों ने जीत दर्ज की। गुजरात के गांधीधाम में 22 से 26 मार्च तक होने वाली यूटीटी 87वीं अंतर राज्य सब जूनियर और कैडेट राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता बालक वर्ग के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम की कमान आयुष मिश्रा संभालेंगे। नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र के कौढ़ापर और सालेपुर गांव के बीच एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से कार में सवार 3 छात्रों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराने के बाद पानी भरे गड्ढे में गिर गई। हादसे में 2 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मृतक इंजीनियरिंग के छात्र थे। इधर नवादा की विधायक विभा देवी के छोटे पुत्र अखिलेश कुमार यादव की पथरा इंग्लिश गांव में घर के पास ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पटना के रामकृष्णानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नंदलाल छपरा स्थित एक घर में पुलिस ने छापेमारी कर प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद की है। कार्रवाई के दौरान 9 कार्टन में रखे 20,000 से अधिक इंजेक्शन बरामद किए गए। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पटना के फतुहा नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर में पुलिस ने एक ट्रक से गांजा और शराब बरामद की है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिले के फुलका थाना क्षेत्र की नेपाल सीमा के पास से पुलिस ने लगभग 900 बोतल नेपाली शराब जब्त की है। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ स्तूप पर थाईलैंड से आए 116 बौद्ध भिक्षुओं ने पूजा अर्चना की। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, थाना स्तर के पुलिस अफसरों के भ्रष्ट आचरण पर मुख्यालय का सख्त निर्देश, पदावनत हो उसी थाने में तैनात होंगे अफसर। दैनिक जागरण ने लिखा है, पटना के अपार्टमेंटों में शिविर लगा, आज से दिया जाएगा पीएनजी कनेक्शन। प्रभात खबर ने समृद्धि यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, 7 निश्चय 3 में 2025 से 2030 के बीच हर क्षेत्र में होंगे विकास के काम, सीएम। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जंग से तेल में आग, शेयर बाजार झुलसा। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, राष्ट्रपति ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में स्थापित किया श्रीराम यंत्र। आज अखबार की सुर्खी है, चांद नहीं दिखा, शनिवार को मने की ईद। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में थाना स्तर पर भ्रष्ट आचरण वाले पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को अब निलंबित करने के साथ साथ पदावनत भी किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के 4th चरण की परीक्षा का विज्ञापन इस महीने के अंत तक प्रकाशित किया जाएगा। जिलेवार निकाली जाएंगी रिक्तियां। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद, आज अलविदा जुम्मा। और मौसम विभाग ने आज मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और बांका जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।